里？नंबर बता दो।
28
नंबर हमें लाभ किया। अट्ठाईस नंबर तो नहीं है यहाँ पर।
हाँ
हाँ
ऊपर वाला
तो 43 नंबर का श्लोक है। 28 नंबर कहाँ है? कौन सा? हाँ जी द्रव्यज्ञा पैसे का दान वस्तु का दान मकान का दान इसको द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्यज्ञा अर्थात जो दुनियावी पदार्थ हैं उनका दान स्वाहा करने वाले दोनों पदार्थों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले तपो यज्ञ तप कहा जाता है आत्मिक स्थिति को देह को भूलना और आत्मा बिंदु को याद करना ये है तपस्या ये है तप यज्ञ। तो तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले योग यज्ञ अपन को आत्मा समझ है परम पिता परमात्मा के साकार स्वरूप को पहचान कर उस परम पिता परमात्मा को याद करने वाले कितनी कितनी बातें बताई। द्रव्य यज्ञ यानी दुनियावी पदार्थों का दान करने वाले तप यज्ञ अर्थात आत्मिक स्थिति रूपी जो तप है तपस्या है वो करने वाले और आत्मिक स्थिति से भी ऊंची स्टेज है अपन को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के प्रैक्टिकल स्वरूप को याद करना ये है योग यज्ञ। आत्मा ने किसके साथ योग लगाया? परमपिता परमात्मा के साथ तथा अपरे और दुनिया में और भी दूसरे दूसरे योग नाम से कहे जाने वाले हैं जैसे कोई प्राणायाम साधते हैं कोई आसन लगाते हैं तो ये सभी स्वाध्याय यज्ञ अध्ययन करने वाले पुस्तकों का अध्ययन करते हैं ना, तो पुस्तकों का ज्ञान लेने वाले पुस्तकों से भी ज्ञान मिलता है ना। पुस्तकें किसकी लिखी हुई है? मनुष्यों की लिखी हुई है। तो मनुष्य जो भगवान का ज्ञान सुनते हैं, ब्राह्मण मनुष्य, और लिख करके किताबें लिखते हैं, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे या उसमें कुछ न कुछ अपनी बात मिक्स करेंगे? मिक्स करेंगे। तो वो स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय का यज्ञ करने वाले, अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, यतय है ये, इतने प्रकार के योगी संचित व्रता, ये तीव्र व्रत लेने वाले हैं सभी। इसके बाद अगले श्लोक में बताया, अपरे माने जो दूसरे हैं, अपाने प्राणम तथा प्राणे अपानम माने सांस खींचते हैं और पेट में डालते हैं और पेट की वायु को बाहर निकालते हैं, अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं। अपानम प्राण को अंदर लेना और अंदर जाकर के मिक्स होता है ना, फिर वो बाहर निकालना, उसे कहते हैं अपान वायु। अपानम ऐसे प्राण वायु की अपान वायु में और अपान वायु की प्राण वायु में आहुति देते हैं। प्राणापान गति रुद्धा अर्थात प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध्वा माने रोक करके, प्राणायाम परायण जो प्राणायाम के ही आश्रय में रहते हैं, और कुछ हैं नियत आहार, आहार माने भोजन नियमित लेते हैं, नियम पूर्वक थोड़ा आहार लेते हैं, स्वल्प आहार जिसे कहते हैं व्रत दुनिया की भाषा में, नियत आहार उपवास आदि करते हैं। प्राणान प्राणेषु जीवति प्राणों को प्राणवायु में विलीन करते हैं। यज्ञ छपित कलमसा इन विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा कर्मों के जो सामान्य मल हैं, मैल पाप, उनको क्षीण करने वाले ये सभी जो योगी जन हैं, यज्ञ विदो वो यज्ञ के दुनिया में जानकार कहे जाते हैं। परंतु यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो जो यज्ञ में से बचे हुए अन्न का आहार लेते हैं, माने ये सब प्रकार का जो यज्ञ में दान किया जाता है और उस दान में से संसार का जो कल्याण होता है उसमें से जो बचता है, यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य को भोगने वाले हैं। माने यज्ञ में जो कुछ आया और वो स्वाहा हुआ ईश्वरीय सेवा में, उसमें से जो कुछ भी बचा उसको जो आहार करते हैं, वो सभी सनातनम ब्रह्म अनाद ब्रह्मलोक को पहले पहले जाते हैं। माना कोई तो है अपना धंधा धोरी करते हैं, सब तो नहीं है कि मैं स्वाहा करते हैं, कुछ खुद लेते हैं और कुछ यज्ञ में देते हैं, कुछ ऐसे हैं अपना कोई धंधा दोरी नहीं करते, जो भी यज्ञ में आता है उसी यज्ञ में जो स्वाहा हो जाता है, उस स्वाहा होने के बाद जो बचता है उसको ही लेते हैं, अपने लिए नहीं। पहले किसके लिए? पहले यज्ञ सेवा के लिए। यज्ञ में आया हुआ पहले कहाँ लगाना है? यज्ञ में लगाना है। फिर जो बचे उसे जो लेने वाले हैं वो पहले पहले ब्रह्मलोक में जाएंगे, या जो कमाया पहले खुद खाया और बचा हुआ यज्ञ में डाला वो पहले यज्ञ में जावेंगे, ब्रह्मलोक जावेंगे। कौन जावेंगे? जो पहले यज्ञ में स्वाहा करे, जो भी आया और स्वाहा करने के बाद जो कुछ भी कणा दाना बचे उससे अपने पेट में डाले वो पहले जाएंगे, और जो कुछ भी दूसरे हैं कमाई करते हैं पहले खुद का भोग करते हैं और उसमें से जो बचा है वो यज्ञ में डालते हैं। वो पहले जाएंगे या बाद में जावेंगे? वो बाद में जावेंगे, यही मतलब है। हाँ ब्रह्मा सरस्वती कौन है? अभी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, उनकी जो अव्वल नंबर सहयोगिनी शक्ति थी सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया। अब ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो कौन से शरीर में मुख्य पार्ट बजाती है? ब्रह्मा की आत्मा जो ज्ञान चंद्रमा कही जाती है, अपूर्ण चंद्रमा है, वो कौन से शरीर में पार्ट बजाता है? है शंकर में पार्ट बजाता है। सात्विक स्टेज में पार्ट बजाता है या तामसी स्टेज में पार्ट बजाता है? तो जब तामसी बनता है तो किस में पार्ट बजाता है? हाँ, ज्ञान के द्वारा होती है स्थापना और अज्ञान के द्वारा होता है विनाश। तो जगदम्बा जब महाकाली बनती है, तामसी बनती है, तो ब्रह्मा की सोल महाकाली में अर्धचंद्र के रूप में पार्ट बजाती है, तो वो ब्रह्मा हो गया एवरलास्टिंग। और बाप कौन हुआ? जिसमें सात्विक रूप में प्रवेश होकर पहले पहले पार्ट बजाया वो बाप हुआ। पहले राम बाप में और बाद में जगदम्बा में। पहले बाप या पहले माँ? पहले बाप, क्योंकि बाप पहले बीज डालता है, जिसमें बीज डालता है वो बाद में माँ बनती है। ऐसे थोड़े कि पहले माँ फिर बाप। पहले कौन? पहले बाप फिर माँ। तो बाप कौन हुआ? राम हुआ बाप है, और सीता हुई माँ, वो ही है जगदम्बा सरस्वती। उसका भी दो रूप हैं, सीता के भी दो रूप हैं। कहते हैं रामायण में लिखा है भक्ति मार्ग में कि जब राम राक्षसों का हनन करने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने असली सीता को पावक में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया, और उसकी एक मूर्ति बनाई असली सीता की, वो मेटल की बनाई, धातु की। वो धातु पंच तत्वों में से कही जाएगी या चैतन्य कही जाएगी? पंच तत्व। तो पांच तत्वों में से जो मुख्य तत्व है पृथ्वी, वो पृथ्वी ही जगदम्बा का रूप है, सीता का रूप है। सीता जमीन से पैदा होती है और जमीन में ही समा जाती है। तो सीता के दो रूप हुए, असली सीता योगाग्नि में रहती है, और जो मेटल की सीता है जड़ तत्व वाली, जड़त्वमयी बुद्धि वाली, जो आज बाप को पहचानती है और कल भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है यह सदैव चैतन्य बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि है। और पहली सीता सदैव चैतन्य बुद्धि है, इसलिए वो ही रूप है। ये दोनों रूप जब मिलते हैं तो वैष्णवी देवी कही जाती है, महालक्ष्मी कही जाती है। एक है लक्ष्मी और एक है महालक्ष्मी। जो लक्ष्मी है वो चैतन्य रूप है, और जो महालक्ष्मी है उसमें वो जड़ तत्व भी मिल जाता है। माना जो चैतन्य आत्मा है वो पांच तत्वों के शरीर में मिलकर के चैतन्य पार्ट बजाती है महालक्ष्मी के रूप, जैसे नारायण और महानारायण। नारायण है राम वाली आत्मा और महानारायण कृष्ण वाली आत्मा संपन्न होकर के उसमें प्रवेश करती है, तो दोनों का रूप बराबर हो जाता है। ऐसे ही ये दो सीताएं हैं, एक अब्बल नंबर और दूसरी द्वयम नंबर। ऐसे ही ये सृष्टि है। ये सृष्टि पांच तत्वों की जड़ है और से जड़ तत्व से बने हुआ जो परम ब्रह्म का शरीर है उसमें वो सदैव चैतन्य रहने वाली आत्मा प्रवेश करती, तब कहा जाता है शिव बाबा। तब वो शिव बाबा चारों युगों में पूरे कल्प में पार्ट बजाते, दो ही का खेल है, आत्मा का और प्रकृति का। तो प्रकृति है माता और आत्मा है पिता, जिसे परम पिता कहा जाता है। और है अभी नहीं माँ बाप समझ में आए, जगदम्बा पृथ्वी माता है या नहीं है? है माता है, और उस पृथ्वी को गोद में लेने वाला सागर वो ज्ञान सागर बाप है या नहीं है? इस दुनिया में तीन हिस्सा सागर है, ज्ञान सागर, और वो ज्ञान सागर चौथाई हिस्सा जो पृथ्वी है उसको गोद में समेट के रखता है। तो माता पिता का ये कॉम्बिनेशन है ज्ञान सागर और पृथ्वी। और
गांव के 50 किलोमीटर आसपास
भूकंप आ रहा है।
भूकंप
आ रहा है, हाँ।
क्या मतलब?
आपके गांव का नाम क्या है?
जमीन सल्फर है,
सल्फर, हाँ,
इसलिए
गर्मी पैदा करने वाला। कि जो एटमिक एनर्जी बनती है या जो गोला बारूद बनता है उसमें क्या डाला जाता है? सल्फर। तो गर्मी पैदा कर देता है। ये जो एटम बम हैं, इनमें भी वही चीज पड़ी हुई है, वो जब विस्फोट होंगे तो इससे पृथ्वी पर जोर से भूकंप आएंगे। वो भूकंप आने का कारण वो सल्फर हुआ, सल्फर का छोटे से छोटा रूप, सूक्ष्म रूप। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म हो जाती है उसमें उतनी ही ताकत पैदा हो जाती है। तो आपके गांव में वो सल्फर का हिस्सा कहीं है जमीन के अंदर, इसलिए वो भूकंप आ रहा
है।
हाँ हाँ, वही तो बताया, इसीलिए उसकी गर्मी से वो हिस्सा हिलता है। शादी ब्याह होता है ना, तो किसी मकान के पास वो गोला छोड़ते हैं तो कंपन आता है या नहीं आता है? ऐसे ही है, वो कंपन बता रहा है कि दुनिया में बड़े बड़े बॉम्ब तैयार हो गए हैं जिनमें बड़ी भारी गर्मी भरी पड़ी है। वो जब विस्फोट होंगे तो तुम्हारा गांव नहीं सारी दुनिया हिलेगी। और अंतिम समय में जैसे सन 47 में ऑल इंडिया के शहरों से कराची की तरफ जो जो ट्रेनें जा रही थी एक ही टाइम पर, वो पहली पहली ट्रेन सेफ चली गई। उसके बाद जो भी ट्रेनें गई वो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई इतनी जोर पकड़ गई कि सब काट डाले गए। ऐसे ही बताया हाँ, जब पूरी राजधानी स्थापन होगी तो सब बच्चों को नंबर वार वो संकल्प टच होगा। हाँ, पूरी राजधानी स्थापन होने का भी टाइम बता दिया 40 से 50 वर्ष। वो 50 वर्ष कब पूरे होगी? 2027-28। तो नंबर बार संकल्प आएगा और नंबर बार पहुंचेंगे। और जो भी मशीन बनाई है वो मनुष्यों ने बनाई है, और मनुष्यों की बनाई हुई की चीज कोई भी संपूर्ण नहीं होती, कुछ न कुछ डिफेक्ट रह जाता है। और बाप ने जो ज्ञान की मशीनरी बनाई है, इसे ज्ञान की मशीनरी में जो देखने में आता है वो पक्की चीज है। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। बोलो बोलो तेलुगु चप्पू।
एक आखिरी माला में लास्ट मंथ का तंगों की मंत्र है ना, तो यदम का भी नीचे वाले कौन सा धर्म के है?
जगदम्बा तो 108 की माला में लास्ट मणका है, क्योंकि जगदम्बा वाली जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व, वो कौन से धर्म से आता है?
सिख धर्म।
सिख धर्म माना जो आस्तिक धर्म है, आस्था वाले, नास्तिक नहीं, उनमें लास्ट धर्म कौन सा है? सिख धर्म। उसके बाद जो आर्य समाजी आते हैं वो तो नास्तिक हैं, इसलिए वो आस्तिक नहीं कहे जाएंगे। तो जो लास्ट धर्म सिख धर्म से आने वाली जगदम्बा है, वो जगदम्बा की शुरुआत है वहां से, होनी चाहिए सूर्यवंश में, लेकिन सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा बनती है या सारे जगत के सब धर्मों की अम्बा बनती है? तो सब धर्मों के सब बच्चों का संग का रंग लेती है या एक ऊंचे के ऊंचे धर्म के बच्चों का संग का रंग लेती है? तो संग का रंग लगने से नीचे जाती है या ऊंचे स्टेज में रहती है? नीचे जाती है, इसलिए लास्ट मणका है। माता दुनिया की जो भी माताएं हैं वो सब जगदम्बा को फॉलो करती हैं। माता अपने बच्चों के लिए मरती है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का आधार लेती है या पति का आधार लेती है? और बच्चे जैसे कृष्ण बच्चा, गीता माता का पति बन के बैठ गया, मालिक बन के बैठ गया या आर्डर पर चलने वाला बच्चा बन के रहता है? ऐसे ही आज दुनिया में जितनी माताएं हैं उन माताओं के जो भी बच्चे हैं वो बच्चे माँ के ऊपर कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, कंट्रोलर बन के बैठते हैं। इसलिए गीता में आया है कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के माता के रूप में या पिता के रूप में जो भी रास्ता अपनाता है उस रास्ते को सभी फॉलो करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसे, मेरे रास्ते का ही सब अनुगमन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम है, बड़े जैसा कर्म करेंगे बड़ों को देख करके छोटे भी वैसे कर्म करेंगे। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कौन है? कौन है? भगवान शिव बाबा, बापों का बाप। तो वो जैसा कर्म करता है जिस किसी भी संबंध के रूप में, दुनिया के लोग उसी को अनुगमन करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तेलुगु, तेलुगु में बोलो, तेलुगु में। हाँ क्या बोल रहे हैं?
शंकर
तेलुगु लो चप्पू, पक्का पक्का तेलुगु। हिंदी में मत बोलो, तेलुगु में बोलो। हाँ
जगदम्मा शंकर इतना कलो
डमरू बजाया। हाँ,
और जगदम्बा भी आया
उसने क्या बजाया है? उसने खांडा बजाया, खप खप। जो शंकर है उसका नाम ही है शंकर,
शंकरने वाला
नहीं, संकरण मिक्स। तीन आत्माओं का मिक्स पार्ट, सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप, शिव बाप एक, दूसरा सर्व मनुष्य मात्र का बाप राम बाप, और तीसरा राम बाप जो ऊंचे के ऊंचा पाठधारी है, हीरो पाठधारी, उसका बच्चा कृष्ण बच्चा, माना कृष्ण बच्चे का बाप राम बाप। कृष्ण को जन्म देने वाला कौन? राम बाप। और राम को ज्ञान देने वाला कौन? शिव बाप। तो तीन हो गए। इन तीनों का मिश्रण एक पर्सनालिटी में, एक व्यक्तित्व में। कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में, अधूरा चंद्रमा। राम वाली आत्मा रथधारी, जिसका रथ है, और शिव बाप सारथी, उस रथ को कंट्रोल करने वाला। तो तीनों आत्मा एक में है, जो डमरू बजाता है वो बीच में है या लास्ट में है या फर्स्ट में है?
लास्ट में।
डमरू बजाने वाला शिव बाप, राम बाप, कृष्ण बच्चा, बीच में कौन है? राम बाप। तो जो बीच में है वो दोनों तरफ की बातें करता है। कृष्ण बच्चा जो सब धर्म की आत्माओं को अपनी गोद में लेकर के ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाता है, माता के रूप में पाठ बजाता है, वो मां। नीचे जाने वाली माताएं सबसे दुखी होती हैं ज्यादा है? या बाप ज्यादा दुखी होता है, या बच्चे ज्यादा दुखी होते हैं? माताएं ज्यादा दुखी होती हैं। तो ज्यादा नीचे कौन हुआ? माताएं ज्यादा नीचे हो गई। उन माताओं की भी सबसे बड़ी माता कौन हुई? जगदम्बा। उसी जगदम्बा में ब्रह्मा प्रवेश है। जगदम्बा तो डब्बा हो गई, उस डब्बे में पाठ बजाने वाला कौन? ब्रह्मा। तो शंकर का जो डमरू है वो लेफ्ट साइड में भी बजता और राइट साइड में भी बजता। राइट ये है शिव बाबा और लेफ्ट एक है कौन? चंद्रमा, ब्रह्मा बाबा। दोनों तरफ की बातें बजाता है। क्या? वो न बच्चे को छोड़ सकता न बाप को छोड़ सकता, दोनों की बात बताएगा ना, है? इसलिए वो डमरू का पार्ट बजाता है। समझ में नहीं आता है? और
उसका भी पहले मनते हैं कि बाद में
हमारे साथ में अभी बोला हुआ है जिसका बोला हुआ है
दुनिया के आप अपनी बात बताओ वो छोड़ो इस्लामी पहले मरेंगे पहले आए कौन है इस दुनिया में जो दुनिया में पहले आया है वो ही पहले मरेगा
उसके पहले देवी
देवताएं ज्यादा ताकतवर होते हैं या राक्षस ज्यादा ताकतवर होते हैं जो बड़ा बच्चा है वो ज्यादा ताकतवर होता है या छोटा बच्चा जो बाद में पैदा हुआ वो ज्यादा ताकतवर होता है तो राक्षस पहले पैदा हुए और देवताएं बाद में पैदा हुए इसलिए जो पहले पैदा हुए वो पहले मरेंगे और पांच नंबर ब्रह्मा पंचमुखी ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा तो जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है वो ही ब्रह्मा सो विष्णु उस चतुर्मुखी ब्रह्मा में जब संपन्न स्टेज आती है तो चार भुजाओं वाला विष्णु तैयार होता है दो भुजाएं राइटियस दो भुजाएं लेफ्टिस्ट दो भुजाएं ऊपर का पार्ट बजाने वाली दो भुजाएं नीचे का पार्ट बजाने वाली ये चार भुजाओं वाला विष्णु तैयार होता है लेकिन भुजाएं अपने आप चलती हैं या भुजाओं को चलाने वाला कोई है, है? चलाने वाला ऊंचा या जो चलने वाली भुजाएं हैं वो ऊंची तो जो चलाने वाला है वो है राम बाप और भुजाएं हो गई नीचे जो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है इसलिए चार भुजाओं में एक भुजा में शंख एक भुजा में चक्र ये दो भुजाएं ऊपर की शंख अर्थात ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूंकने वाला अभी ब्रह्मा का पाठ बजा सारी दुनिया में शंख फूंक गया सारी दुनिया में ज्ञान का शंख बज गया बजा नहीं बजा शंकर के रूप में पाठ बजता है ब्रह्मा के बाद शंकर तो सारी दुनिया में ज्ञान का शंख बजा नहीं बजा लेकिन जब वैष्णवी आती है जो बाबा ने कहा विजय माला का आवाहन करो तो किस लिए कहा वो शंख है वो शंख है जब बजेगा तो सारी दुनिया में आवाज फैल जाएगा इसलिए वो लेफ्ट साइड की जो भुजा है ऊपर वाली उसमें ज्ञान का शंख दिखाया गया लक्ष्मी को माना वैष्णवी देवी और लेफ्ट साइड की जो भुजा है सरस्वती वो ऐसी आत्मा है जिसने ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट निकाला, ज्ञान का चक्र घुमा करके, क्या पॉइंट? हाँ, कि पहले समझते थे कि भगवान आग का गोला है, रोशनी है, लेकिन मम्मा ने ये पॉइंट निकाला कि आत्मा जब बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी कैसा होगा? बिंदु होगा। ये पॉइंट पहले किसी की समझ में नहीं आया। ये ज्ञान का बड़े से बड़े चक्र का पॉइंट मम्मा ने निकाला, इसलिए उसको ज्ञान का चक्र दिया है। और नीचे हाँ और चक्र के नीचे गदा, गदा वो गदा में तलवार की धार नहीं होती है, मोटा होता है, मोटी बुद्धि, हर बात में बाबा जहां कहीं ज्ञान की बातों में अटकते थे ड्रामा को आगे रख देते। ड्रामा में ऐसा ही नुदा हुआ है तो मोटी बात उठा ली माता के रूप में, वो ज्ञान का गदा हो गया। और लेफ्ट साइड में कमल का फूल जो है कीचड़ में रहता है, और कीचड़ में रह करके भी उस फूल को ऊपर उठाओ तो उसमें एक ही भी बूंद कीचड़ की नहीं समाती। ये पार्ट जगदम्बा का है। क्या? जो सब माताओं की माता है वो इस सारी दुनिया का जो बड़े से बड़ा गृहस्थ जीवन है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा कुटुंब है हमारा परिवार, उस परिवार की माँ है। और वो सारा कुटुंब इस दुनिया में पतितित स्टेज में है या पावन है, है? कलयुग के अंत में ही सारी दुनिया पतित बनती है, सतयुग के आदि में नहीं बनती। तो कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया पतित बन गई, कीचड़ बन गई, घर ग्रस्त का कीचड़, उस घर ग्रस्त के कीचड़ में रहते हुए भी, शरीर की इंद्रियों से रहते हुए भी, मन बुद्धि से उपराम रहती है। इसलिए कमल का फूल जगदम्बा का परिचय, ये विनाश का काम धर्म पिताएं नहीं कर सके, अपने धर्म की स्थापना की लेकिन विनाश किसी धर्म पिता ने नहीं किया। ये विनाश का काम किसको सौंपा? शंकर को। गायन है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर करता है? शंकर तो नहीं करता। शंकर याद में रहता है या विनाश करता है? याद में रहता है। मंदिर में यादगार दिखाया है, जो लिंग है वो शंकर की यादगार है, उसे शंकर में ज्योति बिंदु सोमनाथ के मंदिर में हीरा जड़ा गया, शिव की यादगार। तो लिंग हुआ शंकर और बिंदु हुआ शिव। ये लिंग जितने भी मंदिर बने हुए हैं कीचड़ में रखा है। कीचड़ क्या है? स्त्री का जो रूप है वो ही कीचड़ है। माता कही जाती है, माताओं में सबसे बड़ी माता है जगदम्बा पृथ्वी। पृथ्वी कलयुग के अंत में आकर के एकदम पतित हो जाती, कीचड़ बन जाती, और उस कीचड़ में जो शंकर की याद है सबसे जास्ती। कौन सा धर्म पिता याद में रहता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक याद में बैठे हुए दिखाई। लेकिन इन धर्म पिताओं से भी जास्ती याद में कौन बैठा हुआ दिखाया जाता है? शंकर। तो वो याद का रूप कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए वो इंद्रिय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उस इंद्रियों को कंट्रोल करता है याद की पावर से। और वो रूप पूजा जाता है लिंग रूप में। क्यों पूजा जाता है? वो ही कर्म मनुष्य करते हैं उसी काम इंद्रिय से, और वो ही कर्म वो लिंग रूप प्रजापिता कहो राम वाली आत्मा कहो वो भी कर रहा है। फिर और मनुष्य जो हैं देवता बनते हैं उनकी वो इंद्रिय क्यों नहीं पूजी जाती? शिव की इंद्रिय क्यों पूजी जाती है? क्योंकि कर्म इंद्रिय से कर्म करते करते भी बाप की याद में रहता है। और कैसी याद में रहता है? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, कोई दूजम को याद न करो। अगर दूसरे को याद किया तो देवता का पद मिलेगा, महादेव का पद नहीं मिल सकता। जो महादेव का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो याद का इतना प्रताप है कि याद की शक्ति से कोई भी आत्मा से कोई भी कार्य कराया जा सकता है। ये एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक कितने साल हो गए एटम बम बनाए हुए, उनमें ताकत नहीं है जो एटम बमों का विस्फोट कर सकें। ये कार्य कौन कराता है? वो ही याद की पावर से उनको प्रेरणा मिलती है और वो बमों का विस्फोट करते हैं। वो तो स्थूल विनाश की बात, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है उस ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में जो विनाश होता है वो विनाश भी याद की शक्ति से होता है। जो बाबा कहते भी हैं तुम बच्चे जितना याद करेंगे उतना दुनिया में विनाश होता जाएगा। और विनाश का निमित्त कौन बनता है? निमित्त माने साकार, शक्तियां निमित्त बनती। उन शक्तियों में बड़े से बड़ी शक्ति है जगदम्बा। सारी सृष्टि का विनाश का निमित्त बनती। दुनिया में बड़े से बड़ा विनाश होता है भूकंप से। भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपन। जो पृथ्वी में गढ़कंप आता है, कंपन होता है, वो माताओं के हिलने से होता है। ऐसी स्टेज आ जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया में कि जो भी माताएं हैं वो हिलने लग पड़ेंगी। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा भारी भूकंप आ जाएगा। पृथ्वी हिलती है तो दुनिया की बड़े से बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगें माने बड़े बड़े संगठन, वो सब धराशायी हो जाएंगे। जब बड़ी बिल्डिंगें धराशायी होंगी तो उनमें रहने वाले सब जिंदा रहेंगे, है मर जाते। यह है बेहद का मरना। बेहद का मरना माना देह अभिमान से मरेंगे। बाप का बनना पड़ेगा। और
चित्र में विचित्र को या चित्र में विचित्र को याद करना,
विचित्र को याद करना है।
करके हो से जब भी याद करते हैं विचित्र में चित्र याद करना है क्या?
विचित्र में चित्र को याद नहीं, चित्र में विचित्र को याद करना। चित्र माने साकार, विचित्र माने चित्र से विपरीत, वो है शिव। तो जो साकार में विचित्र माने शिव को याद करना। जो सदैव विचित्र है, कभी शरीर धारण नहीं करता, वो चित्र में प्रवेश करता है। कौन से चित्र में? जो सदैव साकार है इस सृष्टि पर। इस सृष्टि पर सदैव साकार कौन है? राम बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो वो बड़े से बड़ा चित्र है, उस चित्र में वो विचित्र प्रवेश करता है। वो प्रैक्टिकल रूप है भगवान का, इसलिए उस प्रैक्टिकल रूप को याद करना। टीवी में याद नहीं करना, कास्केट में याद नहीं करना। आसमान में सितारा है उसको याद नहीं करना, वो सब जड़ हैं। किसको याद करना? साकार में, साकार चित्र में उस निराकार विचित्र को याद करना। जो चित्र के विपरीत है, चित्र का फोटो खींचा जा सकता है, उसका फोटो नहीं खींचा जा सकता, उसका भी फोटो नहीं खींचा जा सकता। उसके जो बच्चे आत्माएं हैं उनका भी फोटो नहीं खींचा जा सकता। तो क्या करना है? साकार में निराकार को याद करना, चित्र में विचित्र को याद करना। ओम शांति।